अभी हम दो मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे और उसके पश्चात ये स्वागत सत्र का शुभारंभ होगा। बहुत सुंदर गीत अभी हम सुन रहे थे योग की महिमा पर। योग अभ्यास से जीवन में परम शांति अनुभव होती है, आत्मिक सुख मिलता है, हमारा जीवन संयमित होने लगता है। हम जो परिवर्तन अपने संस्कारों में अपने जीवन में लाना चाहते हैं वो हम ला सकते हैं। और आज हम देखते हैं वर्तमान में योग लोकप्रिय हो रहा है। अभी 21 जून को ही हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो न केवल ये मन को स्वस्थ बनाने वाला है लेकिन हमारे तन को भी ये स्वस्थ करता है। तो ऐसे योग के विषय में आप आने वाले 3 दिनों में बहुत गहराई से समझेंगे भी और उसका अभ्यास भी करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ चंडीगढ़ से आई हुई हमारी पूजा बहन सुमन बहन को कि मंच पर विराजमान हमारी वरिष्ठ बहनें और भाइयों का स्वागत करें गुलदस्ते के द्वारा। हमारी सभा में नेपाल से आए हुए भाई बहने भी उपस्थित हैं, उनका भी हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जो नेपाल से भाई बहने आए हैं वो हाथ हिलाएंगे। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर से आप यहाँ राजयोग शिविर में पहुँचे हैं। और अभी हमारे मधुर वाणी ग्रुप के रमेश भाई, जयराज भाई और लक्ष्मण भाई, वो आपके स्वागत में एक मधुर गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप तीनों ही यहाँ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं कई वर्षों से शांतिवन में दे रहे हैं। जयराज भाई आर्ट डिपार्टमेंट में हैं, रमेश भाई यहाँ शांतिवन में सेवाएं देते हैं और लक्ष्मण भाई मनमोहिनी वन जो अपना दूसरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो अभी हम सुनेंगे स्वागत गीत।
Hello. Hello. Hello.
योगेश्वर शिव आए हैं राजयोग सिखलाने, आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। योगेश्वर शिव आए हैं राजयोग सिखलाने। आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने। आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। स्वागत है आपका स्वागत है। चलते रहेंगे हरदम, ना जाने रुक जाए कब सांसों के सरगम। यूं तो झमेले जग के चलते रहेंगे हरदम, ना जाने रुक जाए कब सांसों के सरगम। लो राजयोग का अमृत जीवन को अमर बनाने। लो राजयोग का अमृत जीवन को अमर बनाने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने। आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। स्वागत है आपका स्वागत है। स्वागत है आपका स्वागत है।
सभी अपने स्वागत तालियों के साथ करेंगे।
पालो ओ प्रभु की प्रिय संतानो। प्राचीन योग भारत का सारा जग जिसको जाने। प्राचीन योग भारत का सारा जग जिसको जाने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने। आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। स्वागत है आपका स्वागत है। स्वागत है आपका स्वागत है। योग से रोग कटे सब काया कल्प हो जाए। जन्मों के पाप मिटे गम ओझल हो जाए। आगु तीर्थ महान यहाँ आए शिव भगवान। भाग्यवान है आप बड़े भगवान के मेहमान। ये नया नहीं है रिश्ता हम सब जाने पहचाने, ये योग महा सुखदाई, खुशियाँ भी लगे मुस्काने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने, आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। योगेश्वर शिव आए हैं राजयोग सिखलाने, आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। दो पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने,
दो
पल के जीवन में युग युग की प्यास बुझाने, आ जाओ आत्मन प्यारे प्रभु से मिलन मनाने। स्वागत है आपका स्वागत है, स्वागत है स्वागत है आपका स्वागत है, स्वागत है स्वागत है आपका स्वागत है।
सचमुच आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप भगवान के मेहमान बने हैं। ऐसे तो दुनिया में अनेक स्थानों पर गए होंगे, अनेक बार मेहमान बने होंगे, लेकिन यहाँ विशेष भगवान के मेहमान बने हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और इस स्वागत को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ हमारी आदरणीय गीता बहन जी, जो वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, बिजनेस एवं इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आप 14 वर्ष की अल्पायु में ही इस विद्यालय के संपर्क में आए और इनके शिक्षाओं से प्रभावित होकर के 1972 में आपने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। अपने विद्यार्थी जीवन काल में आप बहुत मेधावी छात्रा रही। प्रारंभ में ईश्वरीय सेवाओं में आप गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, सूरत में सेवाएं देते रहे। फिर भावनगर सब जोन के आप 14 वर्षों तक संचालिका रहीं। 1993 से आप यहाँ मुख्यालय में ही अपनी सेवाएं देते हैं, खासकर प्रारंभ में ज्ञान सरोवर एकेडमी जो माउंट आबू में है, वहाँ आप आवास निवास, रिसेप्शन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रभावी के रूप में सेवाएं देते रहे। और अभी कुछ वर्षों से यहाँ शांतिवन में आप सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत कुशल और अनुभवी वक्ता हैं सभी कार्यक्रमों में। यहाँ विद्यालय में जो भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में आपके व्याख्यान होते हैं, और बिजनेस इंडस्ट्री विंग के द्वारा होने वाली रैली अभियान में आप सक्रिय भाग लेते हैं। 1985 में भारत एकता युवा पदयात्रा का भी आपने नेतृत्व किया। विदेशों में भी अनेक देशों में जाकर के इस ज्ञान से आपने अनेक आत्माओं में जागृति लाई है। पीस ऑफ माइंड जो ब्रह्मा कुमारी का चैनल है, 24 घंटे का चैनल है, उसमें भी आपके प्रवचन प्रसारित होते हैं। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका गीता की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन है। आप लाभ हानि सुख दुख में समान स्थिति में रहते हैं, और आपके लिए मैं कहूँगी, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, कलियाँ फूलों को खिलना सिखाती हैं, और गीता बहन जी राजयोग के द्वारा सभी को जीवन जीने की कला सिखाती हैं। तो आपका स्वागत भी करेंगे और इस विद्यालय की सेवाओं से भी आपको अवगत कराएंगे आदरणीय गीता बहन जी।
ओम शांति। ज्ञान के सागर, राजयोग के आदि शिक्षक, हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, मंच पर विराजमान ब्रह्मा कुमारीज के हमारे वरिष्ठ भ्राता और मल्टीमीडिया के चीफ राजयोगी करुणा भाई जी, आज के कार्यक्रम का जो संचालन कर रही है और राजयोग शिविर की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका डॉक्टर सविता बहन जी और आपके इस 5 दिवसीय कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी इंदिरा बहन, कुछ समय के बाद हमारे बीच पधारने वाली इस विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय रत्न मोहिनी दादी जी, जो कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंच जाएगी, और आप सभी भारत एवं नेपाल के विभिन्न शहरों से पधारे हुए योग अभिलाषी बहनें, भाई एवं बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुख्यालय के सबसे बड़े शांतिवन परिसर में आप पधारे हैं। हम इस पावन मनभावन अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसे हुए इस सुंदर प्रांगण में हमारी दादियां, हमारे सभी शांतिवन निवासी समर्पित भाई बहनों की ओर से भी मैं आपका हार्दिक पुनः अभिवादन करती हूं। भाइयों और बहनों, प्रतिवर्ष माउंट आबू हिल स्टेशन होने के कारण लाखों टूरिस्ट भाई बहने माउंट आबू में आते हैं। आबू भ्रमण, आबू दर्शन के लक्ष्य से, पर आप सभी यहां पधारे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे हैं, अवश्य ही आबू भ्रमण के लक्ष्य से आप नहीं पधारे हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अध्ययन करने पधारे हैं। आपके इस आध्यात्मिक प्रेम का, प्रभु प्रेम का, योग प्रेम का हम स्वागत करते हैं। आज सारी दुनिया भौतिकवाद और भोगवाद में फंसी हुई है, उस वातावरण में प्रभु को जानने की जिज्ञासा रखना, योग सीखने का लक्ष्य रखना और अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ पुरुषार्थ करने की चाहना रखना, वाकई ही आप सभी महान आत्माएं हैं। आने के लिए तो हजारों भाई बहनों के मेहमानों के नाम आते हैं, पर अंत घड़ी कईयों का कैंसल हो जाता है और अंत घड़ी कईयों का फाइनल हो जाता है। इसलिए हमारी दादियां कहती है कि जो यहां पहुंच गए वो भाग्यशाली थे। आप सभी वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। अवश्य ही आपके पुण्य का खाता जमा है, तब तो इस पावन भूमि पर आपके पांव पड़े हैं। आप जिस हॉल में बैठे हैं, स्ट्रक्चरल वाइज भौतिक रूप से ये अपने आप में विशेष हॉल है ही। 20,000 लोग बैठ सकते हैं आराम से और अनेकानेक भाषाओं में ट्रांसलेशन भी उन्हें मिल सकता है। ऐसी सुविधा वाला ये पिलर लेस हॉल है, लेकिन इसकी जो आध्यात्मिक विशेषता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो हॉल है जहां प्रति वर्ष लाखों राजयोगी भाई बहने प्रभु मिलन मनाते हैं। डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं और खास देश विदेश से तपस्या करने के लिए आते हैं। ऐसे योग के शक्तिशाली पवित्र वाइब्रेशन से भरा हुआ ये रूहानी स्थान है। हम शुभ भावना रखते हैं आप सबके लिए भी, कैसे शांतिपूर्ण तपस्या के वाइब्रेशन से पूर्ण स्थान और वातावरण में आप भी सुंदर अलौकिक अनुभवों को प्राप्त करें। जैसे सविता बहन जी ने कहा कि जीवन में कई पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक प्रसंगों के हिसाब से अनेकानेक स्थानों पर जाना होता है, लेकिन इस बार यहां आपका जो आना हुआ है वो और कोई लौकिक प्रसंग व्यावसायिक हिसाब से नहीं, केवल कथा कीर्तन के भक्ति के लक्ष्य से नहीं, परंतु आपका यहां आना हुआ है आत्मकल्याण के लक्ष्य से, स्वयं की उन्नति के लक्ष्य से, सेल्फ डेवलपमेंट के लक्ष्य से। आप अपने आप को देखिए, अपने जीवन को देखिए, रोज की दिनचर्या को देखिए। बहुत कम समय हम खुद के लिए देते हैं, बहुत कम समय खुद के लिए सोचते हैं। अक्सर हमारा बुद्धि योग, हमारा समय दूसरों के चिंतन में ही खर्च होता है। ये मौका है आपके लिए, बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया गया है। आपको टाइम टेबल मिला होगा आत्मिक विकास और व्यावहारिक शुद्धि के लक्ष्य से बहुत सुंदर विषयों का चयन किया गया है। ये सामान्य कथा कहानियां नहीं है, ये सुनी हुई शास्त्रों की कहानियां नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से दिया हुआ सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। हम चाहेंगे हर सत्र आप पूरी एकाग्रता और रुचि से अटेंड करें और जितना समय आप यहां हैं, जो कुछ आप ज्ञान की बातें सुने उस पर शांति से गौर करें, समझे, अभ्यास में लाए। तो हम आपका पुनः हार्दिक अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप हमारे विभिन्न केंद्रों के माध्यम से ही यहां आए हैं, इसलिए आप विद्यालय को जानते हैं। जरूर वहां की सेवा की प्रवृत्तियों में हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों के सेवा कार्य में आप सहयोगी रहते हैं, तभी तो आप यहां पधारे हैं। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि 1936 में, आज से 79 वर्षों पूर्व, सिंध हैदराबाद में स्वयं दिव्य ज्योति बिंदु शिव परमात्मा ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। उस समय भारत अखंड था, सिंध हैदराबाद भारत का ही एक शहर था। प्रारंभ में ही लगभग 350-400 माताओं बहनों, कुछ परिवार और कुछ भाइयों ने, बच्चों ने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया। लगातार 14 वर्षों तक उन्हें सत्य ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, जीवन में दिव्य गुणों की धारणा और समाज की आध्यात्मिक सेवा, इन चार विषयों पर घनिष्ठ प्रशिक्षण दिया गया। 14 वर्षों की अध्ययन और तपस्या के बाद ये समर्पित भाई बहने आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हुए तो विश्व पिता परमात्मा ने विश्व सेवा के लक्ष्य से भारत में स्थानांतरित होने का आदेश दिया और 1950 में 1 मई को यह विश्वविद्यालय सिंध हैदराबाद कराची से भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हुआ। तब से माउंट आबू इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। 1952 से हमारी ईश्वरीय सेवाएं शुरू हुई। प्रारंभ में जो समर्पित बहने थी, जिनको आज हम दादियां कहते हैं, उन 350-400 आदि रत्नों में से एक आज आपके सामने दादी रत्न मोहिनी जी उपस्थित होंगे। बाबा ने विभिन्न शहरों में इन समर्पित बहनों को भेजा। उस समय विद्यालय का कोई भारत में संपर्क नहीं था, हमारे पास कोई इतना धन नहीं, साधन नहीं, लेकिन इन समर्पित बहनों के पास सत्य ईश्वरीय ज्ञान था, परमात्मा से सच्ची लगन थी, सद्गुणों का खजाना था और श्रेष्ठ चरित्र की अलौकिक पूंजी थी, जिसको लेकर उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय के न सिर्फ समग्र भारतवर्ष में लेकिन विश्व के पांचों ही खंडों में लगभग 140 देशों में 9000 से अधिक सेवा केंद्रों, उप सेवा केंद्रों और लगभग 21,000 से अधिक विभिन्न गांवों में गीता पाठशालाएं खुली हुई है। इन सेवा केंद्रों के माध्यम से हम समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक सेवा करते हैं। यहां आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, इसमें कोई धर्म, जाति, भाषा, आयु के भेद नहीं है। यह विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एफिलिएटेड है। उनकी सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल में और यूनिसेफ में भी ग्रेड A1 स्टेटस से कार्य कर रहा है। प्रतिवर्ष सेवा के विभिन्न विश्वव्यापी प्रोजेक्ट हम हाथ में लेते हैं। इस वर्ष को हम योग वर्ष के रूप में मना रहे हैं। आप जानते हैं भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ की सभा में योग दिन मनाने का, इंटरनेशनल योग डे मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको विश्व के सैकड़ों देशों ने अपना समर्थन दिया था और उस कारण ही इस वर्ष से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के रूप में विश्व के 177 देशों में मनाया गया। जब सारा विश्व योग विद्या सीखने के लिए जागृत हुआ है, ऐसे समय पर हम भारतवासी भाई बहनों का, बल्कि मैं कहूंगी हमारे भारत, नेपाल या सभी देशों के लोगों का ये नैतिक फर्ज है कि हम स्वयं यथार्थ योग को समझें, नियमित योग अभ्यास करें और योग के ऐसे सुंदर अनुभव जीवन में प्राप्त करें जो कोई भी हमें योग के बारे में पूछे हम सही मार्गदर्शन दे सके। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूं कि 5 दिवसीय आध्यात्मिक राजयोग शिविर कार्यक्रम में आप जो आए हैं, आप पूरे ध्यान से अगर हर सत्र को आप सीखेंगे तो यथार्थ योग किसे कहते हैं, कैसे करना होता है, इससे जीवन में क्या फायदा है, ये सारी बातें आप अच्छी रीति समझ सकेंगे। मैं पुनः आप सबका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत, अभिवादन करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद गीता बहन जी को। इस विद्यालय में आप आए हैं, ये एक यूनिवर्सिटी भी है और हम कहेंगे कि ये एक हॉस्पिटल भी है। यूनिवर्सिटी क्योंकि परमात्मा पिता ही हमें शिक्षक के रूप में यहाँ ज्ञान देते हैं, और ये एक हॉस्पिटल है, रूहानी हॉस्पिटल है, क्योंकि आत्मा को जो आज 5 विकारों की बीमारियां लग चुकी हैं उसका भी सही इलाज इस ज्ञान रूपी औषधि के द्वारा होता है। यहाँ अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से विश्व को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे कहते थे पहले कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि विश्व में अनेक देशों में उनका साम्राज्य था, ऐसे ही ब्रह्मा कुमारीज के भी 5 महाद्वीपों में लगभग 144 देशों में आपने सुना सेवा केंद्र हैं, सेवाएं चलती हैं, तो इस विद्यालय की सेवाओं का भी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ऐसा हम गर्व के साथ कह सकते हैं। और अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय करुणा भाई जी को, आपने सुना आप यहाँ मल्टीमीडिया के चीफ हैं, आप यहाँ अपने ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस के भी डायरेक्टर हैं, मीडिया विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं, आप कर्नाटक से इस विद्यालय के संपर्क में आए और 1971 में आपने ईश्वरीय सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया। प्रारंभ में कर्नाटक में अनेक स्थानों पर आप सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। 76 से आप यहाँ मुख्यालय में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही नम्रचित, सौम्य स्वभाव के हैं और जो भी हमारे चैनल्स में प्रोग्राम आते रहे हैं अनेक वर्षों से, आस्था चैनल में, संस्कार चैनल में, जी टीवी में, आपके ही अथक प्रयासों से वो संभव हो सका। और अभी पीस ऑफ माइंड चैनल की जो शुरुआत हुई उसमें भी आपके अथक प्रयास हैं, तो मैं आपके लिए कहूंगी, सीप को मोती मिले तो और क्या चाहिए, रात को चांदनी जगे तो और क्या चाहिए, और हमें आपकी अनमोल प्रेरणाएं मिले तो और क्या चाहिए। तो हम आपके अनुभवी वचन सुनेंगे शुभकामनाओं के रूप में।
ओम शांति। हम सभी एक साथ बोले ओम शांति। आप सभी को बताया गया कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं, परंतु दुनिया ये जानते हैं कि आबू एक महान तीर्थ स्थान है। इसको अबू अंबाजी के नाम से भी लोग जानते हैं। अनेक महान ऋषि मुनि इन्हीं पहाड़ों में तपस्या किए हैं। अंबाजी का बहुत महिमा है, तो इसीलिए शास्त्रों में भी अबू एक महान तीर्थ है, ऐसा अनेक शास्त्रों में गायन है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं, तो आप सबने संकल्प किया कि हमको यहां आना है, पर आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आप सबको मालूम भी पड़ गया होगा कि यहां बहुत बारिश आ गई, राजस्थान में बहुत बाढ़ आ गए, और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा दो ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो गया था बारिश के ही कारण। ये सब कुछ आपने देखा और सुना, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत फास्ट है। फिर भी मैं ही कहूंगा, आप सबकी शाबाश है कि आप सभी इस महान तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं। तो जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो भारत में कहते हैं कोई ना कोई एक मन में संकल्प लेके जाते हैं, जिसको व्रत भी कहते हैं। तो आपने सोचा नहीं हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, तो जितना दिन आप यहां है, दो तीन दिन, तो समझो हमने एक व्रत लेके आए हैं यहां। तीर्थ यात्रा में अपने जीवन को एक पावन बनाने के लिए, सर्व पापों से मुक्त होने के लिए, हरेक तीर्थयात्री कोई ना कोई व्रत रखते ही है। तो आप भी समझो ये तीन दिन जो है एक बहुत बड़ा व्रत रखेंगे, उसको सरल भाषा में कहना हो उपवास कहते हैं। तो आप कहेंगे तो उपवास माना खाना पीना नहीं, इसी को कहते हैं ना उपवास। परंतु यहां हम उपवास उसको कहते हैं, उप माना नजदीक, वास माना रहना। किसके नजदीक रहना है यहां? एक ईश्वर के। आपने सब कुछ अपना लौकिक कारोबार सब कुछ थोड़ा टाइम के लिए भूल करके आप सभी यहां आए हैं। हमारी बहनों को कोई क्या खाना बनाना, क्या करना, क्या कोई चिंता नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना ये कोई चिंता नहीं, अपने भाइयों को कोई व्यवहार का चिंता नहीं, सब कुछ छोड़ करके आप सभी यहां आए हैं उपवास करने के लिए, एक परमपिता परमात्मा के पास रहने के लिए। वो आनंद क्या होता है, वो अभी तक जिन्होंने अनुभव किया उनको अनुभव है, और आप आते ही थोड़ा कुछ तो अनुभव कर ही रहे हैं। आपस में एक दो को कहते होंगे देखो कितनी शांति है, अंदर आते ही आपको ये महसूसता हो गई है कि कहीं और जगह आए हैं, ये कोई वो जगह नहीं है। शांति ही शांति का अनुभव आप सबने शुरू कर लिया है करना। तो इसीलिए तो समझो आप ये तीन दिन इस व्रत निरंतर प्रभु के पास है, परमात्मा के पास है, उपवास है, और कहीं नहीं, बहुत नजदीक। आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा आपको एक वरदान के रूप में मिला है। भारत में कभी कोई कहते हैं कि भाई आप इस स्थान पे चले तो कहेंगे कि प्रभु की इच्छा, आम तौर पर हमारे देश में ये कहते हैं। तो मैं भी कहूंगा इस महान आबू तीर्थ में आप सभी आए हैं, पहुंचे हैं सुख सलामत से, क्या कहे, प्रभु की इच्छा। तो इसीलिए तो प्रभु ने आपको यहां तक लाया है, तो अब हम प्रभु के पास ही रहेंगे 3 दिन। ये संकल्प आप लोगों को दृढ़ करना है, और कोई व्यवहार नहीं, वो वापस जाने के बाद करेंगे। मुझे मालूम है हरेक के पास मोबाइल जरूर है, कोई बात नहीं, पर कोशिश करना कि जितना अपने आप को प्रभु के पास, परमात्मा के साथ अपने आप को महसूस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज इस जिंदगी में आज तक हमने नहीं पाया है वो आप इन 3 दिनों में प्राप्त करेंगे, ये विश्वास हमारे बहनों ने पहले ही बताया कि आप सबको भगवान की ये प्राप्ति होगी। यात्रा में कहा जाता है कुछ छोड़ के जाना है, कुछ लेके जाना है, कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि तीर्थयात्रा में जो कोई भी जाते हैं कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं। छोड़ के क्या जाना वो तो आप 3 दिन में सुनेंगे, जो जो जिन जिन के पास क्या क्या है वो बहनें आपको बहुत अच्छी तरह से हमारे बहुत अच्छा समझाएंगे क्या छोड़ के जाना, क्या लेके जाना। दो चीजों की मैं आपको एक थोड़ा सा, एक है सारे विश्व में जितने भी हम जो मानव जिनको कहते हैं, मनुष्य जिनको कहते हैं, वो सचमुच इस समय पर इस दुनिया के इस खेल के अंदर खो गए हैं। किसी से भी पूछो कि भाई थोड़ा सा ये काम, कहेंगे नहीं मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, हर एक सुबह से शाम तक बिजी है और सब काम के लिए फुर्सत है, परंतु अपने लिए टाइम है ही नहीं। कहा जाता है कि खोया हुआ, सुबह खोया हुआ शाम को घर आया तो भी अच्छा कहते हैं। भले हम इतना दिन इस दुनिया में बहुत कुछ किया, पर एक प्रश्न जरूर रहा तो ये सब क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्यों इस सृष्टि पे आया हूं, मैं क्या ले आया हूं, मैं क्या ले जाऊंगा। तो कम से कम आपको जो अपने आप को जो खोया हुआ मानते हैं, हम कौन है हम नहीं जानते हैं, हम कहां से आए इस दुनिया में नहीं जानते हैं, तो इतना भी आपको बहुत अच्छी तरह से बहने बता देंगे, जो आप इतने संतुष्ट होके जाएंगे यहां से, जो हमको आज तक किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्थानों में हमको इन बातों का समझ में नहीं आया था जो मैं कौन हूं, जो खोया हुआ मैं अपने आप को लेकर के मैं यहां से जाऊंगा, ये आपको पूर्ण विश्वास मैं दे सकता हूं। लास्ट एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप सभी कितने महान हो जो ये मास जो है सारे भारतवर्ष में शिव 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 कहा जाता है। जितने भी शिव के मंदिर है इस भारतवर्ष में, हर रोज लाखों भाई बहने जा रहे हैं। हमारे नासिक में इस समय पर कुंभ मेला भी हो रहा है, तो ऐसा समय है अभी ये, जो आप जो सोचो वो आपको प्राप्त हो सकता है, पर किसी व्यक्ति से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, एक शिव से, एक निराकार परमपिता परमात्मा से, क्योंकि इस समय पर वो स्वयं इस भारत में उपस्थित है, तभी तो मंदिर में जा रहे हैं। तो आप भी यहां आए हैं, परमात्मा शिव का ये मंदिर है, आपका घर है, हम सब का बाप का घर है, तो आप मेहमान नहीं हैं, आप सभी आप अपने पिता के घर पे आए हैं, ऐसा महसूस करते हैं। तो इसीलिए जो भी बहने यहां सुना रहे हैं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने जो हम सबको सुनाया, वो आपको अपने जीवन के अनुभव से आप सबको सुनाएंगे। तो आप केवल अपने आप को जानना नहीं है, साथ साथ में हम सबके पिता परमात्मा को भी आप जानेंगे और उनका भी पूरा अनुभव करके जाएंगे। सिर्फ उच्चारण या नमन करना नहीं है, वो हमारा बाप है, वो हमारा साथ है, ये अनुभव आप शत शत प्रतिशत आप अनुभव करके जाएंगे, क्योंकि समय वो है, ऐसा आशा करता हूं। परंतु एक कष्ट जरूर आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल व्यस्त रहने वाले सभी को सबसे अच्छी चीज क्या है, नींद। आज की दुनिया में क्योंकि सभी बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो खाना नहीं भी मिले तो हर्जा नहीं है, पर नींद जरूर चाहिए अच्छी तरह से। वो भी आप यहां कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई दुनिया का काम नहीं है, परंतु एक ऐसा समय है जो स्वयं भगवान के साथ रहने का, उनसे सब कुछ प्राप्त करने का जो समय है, जिसको अमृत वेला कहते हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी जो महान संत है, सभी ने ये कहा है, ऐसा एक ही समय है जिसको अमृत वेला कहा जाता है, जो सुबह 4 से 5 बजे का बीच में बहुत श्रेष्ठ समय माना जाता है। तो आपको ये कष्ट जरूर थोड़ा सा आपको उठाना होगा, ये 3 दिन वो क्या चीज है, ये अमृत वेला क्या है, और उस समय पर कैसे हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभूति इस हॉल में आपको विशेष होता है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा इसी स्थान पर अवतरित होकर के हम सबको ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे नम्र निवेदन करूंगा कि भले सारे दिन ज्ञान का स्नान करते रहेंगे, सब कुछ है, और दिन में थोड़ा कुछ समय आपको रेस्ट करने का भी मिलेगा, परंतु अमृत वेले का ये जो चार से पांच का जो समय है, ये समय आप यहां अनुभव करेंगे तो आपको परमात्मा शिव का साक्षात्कार अनुभूति हो सकता है। ओम शांति।
बहुत सुंदर प्रेरणाएं हमें आदरणीय भ्राता जी से मिली। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो इस तथ्य में, इस वाक्य में बहुत गहराई है और उसे आप यहां से समझेंगे कि मैं कौन हूं। और साथ साथ श्रावण मास में जो परमात्मा शिव की भक्ति का मास है, इस मास में आप यहां आए हैं तो आप सचमुच ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान आपको यहां से प्राप्त होगा। तो ये दो विशेष बातें, और साथ साथ अमृत वेले पर आपने ध्यान खिंचवाया। अमृत वेला सचमुच ही अमृत की वेला है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जिसे कहते हैं। जरूर नींद का त्याग करना होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति अमृत के समान है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ आप सभी भाई बहनों से कि सुबह 4:15 बजे जब आपका योग यहाँ रखा जाएगा तो आप अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होंगे और उस समय का लाभ लेंगे। हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हमारे मध्य पहुंचे, उसके पूर्व मैं निवेदन कर रही हूँ हमारी राजयोग शिक्षिका इंदिरा बहन से। आप राजयोग शिविर की दिनचर्या और नियमों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप लगभग 18 वर्षों से इस ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हैं। पहले आप नागपुर में यहाँ ज्ञान सरोवर एकेडमी में, मुंबई में सेवाएं देते रही, और अभी आप पांडव भवन परिसर जो माउंट आबू में है वहाँ ग्लोबल ऑफिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सुनेंगे राजयोग शिविर के दिनचर्या के बारे में, जो आपकी दिनचर्या यहाँ आने वाले 3 दिनों तक रहेगी। ओम शांति। आप सबका, सभी ने बहुत बहुत दिल खोलकर स्वागत किया है ना। एक बार पुनः पिता परमात्मा के घर में, परम शिक्षक के यूनिवर्सिटी में और परम सद्गुरु के दरबार में आपका पुनः पुनः स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। कि जिस पिता के घर में, जिस परम शिक्षक के यूनिवर्सिटी में और जिस सद्गुरु के दरबार में आप राजयोग सीखने आए हैं, कि जिस राजयोग को सीखकर हम जीवन में सुख शांति की अनुभूति करें। किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अवश्य उस सुख शांति की अनुभूति होती है, परंतु जैसे ही उस स्थान से वापस प्रस्थान करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में, तो हम फिर क्या होता है, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप राजयोग सीखने आए हैं ना, तो इस राजयोग सीखने के समय भी आप यहाँ पर शांति की और अनुभूति करेंगे, लेकिन साथ साथ ये आप लेकर भी जाएंगे। ऐसा ये राजयोग है जो आपको सिर्फ शांति की अनुभूति नहीं कराता है, लेकिन वो शांति और सुख का खजाना भी दे देता है जो सदा आपके साथ रहे और आप जहां भी रहे और उसका यूज करके अपने जीवन को सुख और शांति से भरपूर खुशनुमा बना सके। तो ऐसा जो राजयोग आप सभी यहाँ सीखने आए हैं, इसका पूरा पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि यहाँ जो इन 3-4 दिनों में जो दिनचर्या है उसका बहुत अच्छी रीति से हम पालन करें। तो आप सभी को जैसे ही आप आए, आपको कमरे मिले रहने के लिए, तो साथ साथ में आपको ये टाइम टेबल भी मिला होगा। सभी को मिला है ये टाइम टेबल, जरा हाथ खड़ा करें। तो लगभग सभी को मिल गया है,
और जिनको नहीं मिला हो किसी भी कारण से, तो वो आपको अभी फिर बाद में मिलेगा, अनाउंस करेंगे। तो ये जो टाइम टेबल मिला है आपको, वो इसीलिए मिला है कि आप इसी टाइम टेबल के अनुसार चलेंगे। जैसे बताया कि ये घर भी है लेकिन साथ साथ विद्यालय भी है और साथ साथ ये दरबार भी है। तो जितना अच्छा होगा कि आप इन नियमों का पालन करेंगे, इस टाइम टेबल का पालन करेंगे, तो उतना ही इसका लाभ लेंगे। और सिर्फ कितने दिन की बात है इसको पालन करने की? 4 दिन की। आज तो पहला दिन है ही और आप समय पर पहुंच गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन ऐसे ही टाइम टेबल के अनुसार समय पर पहुंच जाएंगे। और जैसे अगर आज का टाइम टेबल क्या कह रहा था, 5:30 बजे पहुंचना, तो जब टाइम टेबल में लिखा हो 5:30, तो आपको कितने बजे पहुंचना है? 5:30 या उससे थोड़ा पहले? उससे थोड़ा पहले। तो ऐसे ही इस टाइम टेबल में जो भी समय है, जैसे अभी अमृत वेले की बात कर रहे थे 4:15, तो कब पहुंचेंगे? 4:15 या 4:15 से पहले? 4:15 से पहले। तो 2 दिन का, आज का तो 1 दिन हो ही गया, कल और परसों, ये 2 दिन है जो सुबह से रात्रि तक आपका ज्यादा से ज्यादा समय इस डायमंड हॉल में बीतेगा। और बाकी 2 दिन के बाद सिर्फ सुबह में एक सेशन होगा, फिर आप घूमने चले जाएंगे, और उसके 1 दिन बाद फिर सुबह में सेशन होगा, फिर आप अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे, है ना? तो कितना अटेंशन, 2 दिन का सिर्फ अटेंशन रखना है। और विद्यार्थी जीवन में तो हम पंक्चुअल होते ही है ना, तो हम यहाँ पर परमात्मा के बच्चे भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। तो विद्यार्थी नाते से हम स्कूल में जैसे टाइम पर पहुँचते हैं पंक्चुअल टीचर के आने से पहले, ऐसा ही ध्यान आप यहाँ पर भी अवश्य रखेंगे। तो कल सुबह जो टाइम टेबल है उसमें पहला सेशन है आपका 6:30 से 8:30, मतलब नाश्ते के पहले 1 सेशन, नाश्ते के बाद 2 सेशन, उसके बाद आप दोपहर का भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, फिर शाम को आएंगे आपके फिर 2 सेशन, उसके बाद आप रात्रि का भोजन करेंगे, रात्रि के भोजन के बाद फिर आप यहाँ आएंगे, और उसके बाद आप रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। कितनी बार आना है इस हॉल में? 6 बार। और पूरे 6 बार आप पंक्चुअल रहेंगे। और एक एडिशन कर दूं, जो अमृत वेले की बात कर रहे थे वो और एक जोड़ देंगे तो 7 बार। तो 7 बार आप पंक्चुअल समय पर पहुंच जाए, टीचर के आने से पहले अपने अपने स्थानों पर सेट हो जाएंगे। और जैसे भ्राता जी ने बहुत अच्छी बात कही, उपवास की, व्रत की, आज दिन तक तो हम सिर्फ यही समझते आए खाने पीने का उपवास या व्रत, लेकिन भ्राता जी ने बहुत सुंदर उसका अर्थ बताया। उपवास कौन सा? हम परमात्मा के नजदीक रहने के लिए आए हैं। और परमात्मा क्या है? शांति का सागर है, हम उससे सुख शांति की अनुभूति करने आए हैं। इसलिए वाचा मतलब आवाज का भी हम क्या कर लेंगे? उपवास कर लेंगे। जब इस हॉल में आप आए ना, तो आप शांत स्वरूप होकर बैठ जाए। आवाज तो हम बाहर जाएंगे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन हॉल में जैसे ही प्रवेश करें, आप अपने आप को रिमाइंड करा लेना, यहाँ से मेरा उपवास शांति में रहने का आरंभ हो गया। चाहे जिससे बात करनी है, मिलना है, वो सब कहाँ होगा? सेशन पूरा होने के बाद बाहर। तो रखेंगे ना इस बात का ध्यान, हाँ, तभी जो बातें यहाँ सुनेंगे ना, परमात्मा का सद्ज्ञान सद्विवेक जो मिलेगा, वो हम अंदर में उसको उतार पाएंगे। वरना इधर से एक बात सुन रहे और उधर से दूसरी बात सुन रहे हैं, तो क्या होगा? कोई भी एक बात ठीक से अंदर में उतरेगी नहीं। और हम इतना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए किस लिए? तो जिसके लिए आए हैं, सिर्फ दो दिन की बात है, पूरा टाइम आपको 7 बार यहाँ आना है। तो इस प्रकार से आपको हर दिन यहाँ आना है, तो कल और परसों इस हाल के अंदर आपकी 7 बार एंट्री होगी और 7 बार यहाँ से आप प्रस्थान करेंगे। लेकिन 7ों बार एंट्री करते ही आवाज का उपवास माना शांति, बाहर जाने के बाद भले ही आप जिससे बात करना चाहते हैं करेंगे। और ये 7ों बार जो आना है ना, हर एक बार जब आएंगे और फिर उसके बाद जो अगली बार आएंगे, उसका आपस में बहुत अच्छा लिंक है। और इसलिए कोई भी सेशन को मिस नहीं करना। एक सेशन में जो आप सुनेंगे उससे लिंक करते हुए अगला सेशन होगा, उससे लिंक करते हुए उसका अगला सेशन होगा। तो बीच में अगर कोई भी एक सेशन आप मिस कर देंगे, तो आगे आने वाले सेशन में जहां आकर बैठेंगे आप, तो शायद आपको लगेगा बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कृपया करके कोई भी सेशन मिस नहीं करना, पूरे 7ों ही सेशन में यहाँ उपस्थित रहने का ध्यान रखना। तो 2 दिन इस प्रकार से होंगे, जिसमें से रात्रि के सेशन में थोड़ा अंतर है। कल आपको रात में वीडियो दिखाई जाएंगी और परसों रात्रि में आपके अनुभव की लेन देन होगी, आपके प्रश्न होंगे उनका समाधान दिया जाएगा। तो ये 2 थोड़ा चेंज रात वाला, बाकी दिन में तो आपको वो जो परमात्मा का सद्ज्ञान है, वो जो हमारी अनुभवी बहनें यहाँ आएंगी, उनसे बहुत ध्यान से न सिर्फ सुनना है लेकिन अंदर ही अंदर महसूस भी करते जाना है। और वो महसूसता तब होगी जब आप अपने आप को वाणी से परे रखेंगे। इसलिए मोबाइल भी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, भले साथ में रहे आपके, लेकिन या तो स्विच ऑफ रहे, या तो फिर साइलेंट मोड पे रहे, या तो फिर वाइब्रेशन पे, ताकि आप उस ओर आकर्षित नहीं हो, क्योंकि लिंक टूट जाएगी ना। जैसे ही आप सुन रहे और फिर यहाँ मोबाइल में बात किया, लिंक टूट जाएगी। तो इसका भी अवश्य ध्यान रखेंगे। और साथ साथ जो इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें मिलेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे, उनको आप क्या करेंगे, उनको नोट भी करना चाहेंगे या नहीं करेंगे ना नोट? तो डायरी पेन साथ में रखना, ताकि जो जो बातें अच्छी लगती जाएं वो आपके, अच्छी तो सारी बातें होगी ये तो गारंटी है, लेकिन एक हाथ कोई कोड वर्ड लिख दिया जिसको बाद में देखते ही मेरी रील क्या हो जाए, रिवाइंड हो जाए, तो वो कोड वर्ड आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि सेशन पूरा होने के बाद जब मैं फिर से एकांत में बैठकर उसको सोच में लाना चाहूं, तो कोड वर्ड आते ही सारा क्लास मेरे अंदर फिर से रिवाइंड हो जाएगा। और जब रिवाइंड होगा तभी तो प्रैक्टिकल करने का कुछ प्रयास कर पाएंगे, है ना? तो ये बात का ध्यान रखना। तो 2 दिन इस प्रकार से आपके जाएंगे, फिर अगला के मतलब आज पहला दिन, फिर 2 दिन माना 3 दिन पूरे हो जाएंगे, और 4th दिन जो है आपका सुबह का सिर्फ 2 सेशन, अमृत वेला और नाश्ते के पहले 1 सेशन, ऐसे 2 सेशन, और उसके बाद आप नाश्ते के लिए भी प्रस्थान करेंगे, तो आबू भ्रमण के लिए भी प्रस्थान करेंगे। लेकिन हाँ, तो यहाँ पे जो माउंट आबू दर्शन लिखा है, जो सुबह यहाँ आए थे इस हॉल में, जो पहले पहुँच गए थे अपनी ट्रेन टाइमिंग के अनुसार, तो हम उनको बता रहे थे कि माउंट आबू रोड से माउंट आबू जाने का जो रास्ता है कुछ बारिश आने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया है तो काफ़ी रिपेयरिंग हो चुकी है। तो बड़ी गाड़ियां तो नहीं लेकिन छोटी गाड़ियां जा सकती हैं। तो आपकी जो टीचर बहनें हैं, हाँ बहुत खुशी की बात है, तो जो आपकी टीचर बहनें हैं वो हमारा जो साइट सीइंग डिपार्टमेंट है वहाँ से पता कर सकती है, गाड़ियाँ बुक करा सकती है और आप लोग माउंट आबू दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और फिर माउंट आबू दर्शन करके जब आप लौटेंगे, थके हारे होंगे, हाँ तो फिर से आपको रात्रि भोजन करके विश्राम करना है। फिर पांचवें दिन सुबह फिर से अमृत वेले में हाजिर होके और फिर नहा धोकर फिर जो सुबह की क्लास होगी, जो अंतिम क्लास होगी, लेकिन अंतिम होते हुए भी अति 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 महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहाँ से ही आगे हमें कैसा अपना प्रोजेक्ट अपना प्लान करना है ताकि सारा ही जीवन मेरे पास सुख शांति रहे, वो आपको खजाना मिलेगा, वो आपको चाबी मिलेगी। तो वो सेशन करेंगे और उसके बाद आप तो अपने प्रस्थान की तैयारी करेंगे। तो देखिए कोई ज़्यादा मेहनत है हाँ, तो सभी सेशन में बराबर आएंगे ना टाइम पर, हाँ बराबर आएंगे, जो कहते हैं बराबर आएंगे हाथ खड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपका। तो जैसे सेशन के टाइमिंग्स इसमें लिखे हुए हैं वैसे ही नाश्ता भोजन रात्रि का भोजन और चाय आदि इस सब का टाइम पीछे में लिखा है, जिसमें ही अमृत वेले का भी टाइम लिखा है। 4 बजे उठेंगे मतलब, क्योंकि आप तो बहुत सारे भाई बहने आए हैं ना, एक एक कमरे में चार पांच, किसी में 10 भी होंगे हाँ? शांति। तो हम आपको अमृत वेले के बारे में बता रहे थे कि आप लोग कमरे में काफी सारे लोग होंगे, तो कारण नहीं बताना कि इस कारण से मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, कारण का निवारण करके आप समय पर पहुंच जाना। तो ये रहा आपका दिनचर्या। बाकी नियम क्या पालन करोगे और भी, कि जैसे यहाँ भगवान के घर का भोजन हमेशा क्या होता है, प्रसाद का रूप होता है। हम सभी जानते हैं प्रसाद के एक एक कणे का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए जितना चाहिए उतना ही थाली में लेना, और अगर और चाहिए तो बाद में लेना, लेकिन पहले ही बहुत सारा लेके और फिर कहे मेरा तो पेट अब भर गया, अब नहीं खाया जाता, तो वो फिर कहाँ जाएगा, डस्टबिन में जाएगा ना, तो प्रसाद की तो फिर वैल्यू नहीं रह गई ना, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। और जैसे का अपना ही घर है, तो अपने घर में हम जैसे ख्याल रखते हैं कि जब जरूरत है तब बिजली चालू करें, लाइट पंखा, और जरूरत नहीं है तो बंद कर दे। कमरे से बाहर आते हैं सब बंद करके हम निकलते हैं ना, नल बंद करते हैं, लाइट पंखे, ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि जब आप यहाँ से भी सेशन पूरा होने के बाद उठते हैं ना, तो अपनी कुर्सी थोड़ी भी जैसे उठने के कारण सरका देते हैं, तो वापस ठीक करके जाएंगे। अपना ही घर है ना, तो जितना व्यवस्था का ध्यान रखेंगे उतना बेनिफिट हमको होगा। अभी जो पीछे भाई बहने उठ रहे हैं, आपको ये पता रहे, हमारे बीच में हमारी राजयोगिनी दादी जी पधारने जा रही है, उनके आशीर्वचनों से हमें अपनी झोली भरनी है, इसलिए कृपया करके सभी बैठे रहेंगे। अभी ये सत्र पूरा नहीं हुआ है, हमको आशीर्वचनों से झोली भी भरनी है और इस ईश्वरीय घर से आपको सौगात भी मिलनी है।
ओम शांति। आप सभी को आज ईश्वरीय सौगात भी मिलने वाली है। सभी भाई बहने जो उठ रहे हैं कृपया ध्यान दें, आप सभी बैठे रहें। अभी दादी जी, दादी रतन मोहिनी जी हम सबके बीच उपस्थित होने वाले हैं, उनके आशीर्वचन आप सभी सुनेंगे।
और इस बात का ध्यान रखेंगे, टाइम टेबल के साथ आपको बैच भी मिला होगा ना, वो बैच को लगाए रखें, ताकि इस कैंपस में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो आप किस प्रोग्राम में आए हैं उसकी हमें पहचान मिल जाती है। तो जहां भी आप जाएं, इस बैच को लगाना न भूलें। 5 दिन तक ये बैच आपकी बहुत अमूल्य निधि है, जो यहाँ पर आपका लगा ही रहे, इस पर पूरा पूरा ध्यान देना। और साथ साथ में जैसे कहा कि ये परमात्मा पिता का घर है, जहाँ हम अच्छी बातें सीखने आते हैं, अच्छा खान पान सीखने आते हैं, अच्छा रहन सहन सीखने आते हैं, तो कृपया कोई भी यहाँ पर धूम्रपान नहीं करेगा। किसी को भी किसी भी व्यसन की अगर आदत है, इस धरती पर जब आए हो बस एक संकल्प कर लो, मैंने 5 दिनों तक इनको हाथ नहीं लगाना है, न सोचना है, आपको परमात्मा की मदद मिलेगी, बिना उसके आप रहेंगे और जितना पहले रहते थे उससे भी अच्छा रहेंगे। और मैं तो विश्वास करती हूँ कि 5 दिन की सफलता में आपको वो सफलता मिल जाएगी कि आप सारे जीवन के लिए उसका त्याग कर देंगे। तो इस बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। और जैसे बारिश का मौसम है, कपड़े गीले होते रहते हैं, तो गद्दे आदि पर न रखें ताकि वो खराब, जैसे घर में आप ख्याल रखते हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही अपना घर समझकर ख्याल रखेंगे। और जैसे घर में हमको खान पान में कुछ लगता है कि मुझे ये सूट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी टीचर बहनों को बता देंगे, तो वो भी आपके टीचर बहनें आपका ख्याल रखेगी। और जब कमरे से बाहर निकले तो कमरे की हमारी ड्रेस कुछ अलग होती है, लेकिन उस कमरे की ड्रेस के साथ बाहर न निकले, जो हमारा जनरल हमारा पोशाक होता है बाहर का, उसी पोशाक में आप बाहर आएंगे। और साथ साथ सुबह के समय तो खासकर मौन धारण करेंगे। जैसे कहा कि क्लास के बाद भले आप बातें करो, मिलना है किसी से, लेकिन सुबह का जो समय है, जैसे अमृत वेले आओगे ना, तो अमृत वेले के बाद जब जाओगे तब भी ज्यादा वाचा में आने का प्रयास नहीं करना, वो बाद में। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे, और रात्रि में भी समय पर अपने कमरे में पहुंच जाएंगे और सुबह में समय पर यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 7 बार तो एंट्री करेंगे, बाकी समय थोड़ा बाहर भी जाएंगे, खाने पीने में जाएगा, विश्राम में जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पे बाबा का कमरा है, दादी प्रकाशमणि की यादगार प्रकाश स्तंभ है, वहां पर भी बैठकर आप अच्छी शांति की अनुभूति अवश्य करना। तो इन और ब्रह्मचर्य का भी खास पालन करना, और जब सुबह आप आएंगे ना अमृत वेला, तो इतना जरूरी नहीं है स्नान करके आना, हाँ लेकिन अगर आप शौच में जाते हैं तो फिर जरूरी है स्नान करके आना और बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनकर आना। लेकिन अगर सुबह में शौच का ख्याल नहीं है तो फिर बिना स्नान के भी आ सकते हैं, लेकिन जब सुबह की पहली क्लास में आएंगे तब तक तो सभी कैसे आएंगे, स्नान करके ही आएंगे। तो इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे। हाँ, और कुछ लोग मनमोहिनी में रुके होंगे, कुछ लोग शांतिवन कॉम्प्लेक्स में, तो जो मनमोहिनी वन में रुके हैं उनको सुबह की, मनमोहिनी वन में जो रहे हैं वे जरा हाथ खड़ा करें, और जो शांतिवन में रहे हैं वे जरा हाथ खड़ा करें। थोड़े से लोग हैं शांतिवन में, बाकी मेजॉरिटी तो मनमोहिनी वन में है। तो आपको जो सुबह की चाय मिलेगी वो आपको दिव्य लोक में मिलेगी, तो आप चाहे किसी भी बिल्डिंग में रुके हो लेकिन चाय पीने के लिए आप दिव्य लोक में जाएंगे, वहां पर आपको चाय काफी जो भी चाहिए वो मिलेगी। अपनी चीजों की संभाल आपको स्वयं करनी है, हाँ, लेकिन अगर किसी भी कारण से बहुत अच्छी संभाल करने के बाद भी कुछ अगर इधर उधर हो जाता है तो आप खोया पाया डिपार्टमेंट में नाम लिखवाकर उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, पर जितना हो सके उस डिपार्टमेंट तक हमें पहुंचना ही न पड़े ये ख्याल आप अवश्य रखना। टेलीफोन सुविधाएं आपको टेलीफोन एक्सचेंज में मिलेगी, और नाश्ता एवं भोजन आज आपने किया होगा बड़े डाइनिंग हॉल में, वहीं पर होगा आपका, और मेडिकल सुविधाएं एवर हेल्दी हॉस्पिटल में मिलेगी, उसकी भी टाइमिंग्स इसमें सब कुछ लिखी हुई है, तो उस टाइम के अनुसार जहां जहां आपको पहुंचना है और वहां से सुविधाएं प्राप्त करना है वो आप कर सकते हैं। इवन जो यहां पर जो क्लासेस होती हैं, तो हमारे ऑडियो वीडर काउंटर है, वहां से भी आप कुछ खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, लिटरेचर है हमारा वो भी वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि ये 2 दिन जो 7 बार इस हॉल में एंट्री करनी है वो समय पे करेंगे, बाकी सब बातें और भी टाइम है तब कर सकते हैं। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, हमें विश्वास है आप बहुत अच्छी रीति से परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग को, जो वास्तव में आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग का बहुत अच्छा साधन है, कि जब बैटरी चार्ज हो जाती है तब मोबाइल से हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल तो बहुत अच्छा और बैटरी अगर चार्ज नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये राजयोग भी क्या है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का बहुत सुंदर साधन, जो प्रभु पिता आकर सिखाते हैं वो हम सीखेंगे महसूस करेंगे, तो सुख शांति सदा के लिए मेरे जीवन का एक अंग बन जाएगा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कि आप सदा ही खुश रहें, तो ऐसी लक्ष्य रखकर इस शिविर को अटेंड करना, दिनचर्या को फॉलो करना, नियम और मर्यादाओं का पालन करना। ओम शांति।
इंदिरा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जॉइंट चीफ हैं, वो आने वाले थे लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वो अभी हमारे मध्य उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय गीता बहन जी को, वो आपको 10 मिनट कुछ अपने ज्ञान के अनुभवों से लाभान्वित करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे थोड़ा परिचय लेना चाहेंगे। जो भी भाई बहने भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं, उनको हम जैसे नाम अनाउंस करेंगे आप उठेंगे। सबसे पहले जो पंजाब से भाई बहने आए हैं वो उठेंगे। पंजाब के विभिन्न स्थानों से, विभिन्न शहरों से जो भाई बहने आए हैं, हाथ हिलाएंगे सभी, बैठिए। और आप सभी अभी बैठे रहेंगे, आपको ईश्वरीय सौगात दी जाएगी। वो विशेष कार्यक्रम है जिसके बारे में विस्तार से हम थोड़े समय के बाद आपको बताएंगे। जो नेपाल से भाई बहने आए हैं वो उठेंगे। नेपाल से जो भाई बहने आए हैं, हाथ हिलाइए सभी, बैठिए। जो दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं भाई बहने, उठेंगे, हाथ हिलाइए सभी, बैठिए। जो महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं, वो उठेंगे। महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से, मुंबई से जो आए, हाथ हिलाएंगे, बैठिए। आगरा, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न, कर्नाटक, अन्य स्थानों से, यूपी, इन सब स्थानों से जो भाई बहने आए हैं वो उठेंगे, हाथ हिलाएंगे आप सभी, बैठिए। और अभी जो बीके टीचर्स भाई बहने, बीके टीचर्स और गाइड भाई बहने आए हैं वो उठेंगे। बीके टीचर्स और गाइड भाई बहने, हाथ हिलाइए आप भी, हाँ। और आप सभी के लिए विशेष अनुरोध है कि आप अभी ही स्टेज के पीछे बहनों की तरफ इकट्ठे होंगे, आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं दी जाएंगी। जो भी बीके टीचर्स और गाइड भाई बहने हैं वो सभी उठेंगे और यहाँ बहनों के पीछे, स्टेज के पीछे, डायमंड हॉल की स्टेज के पीछे आप इकट्ठे होंगे। और बाकी सभी भाई बहने अभी 10 मिनट और आप बैठे रहेंगे और फिर उसके पश्चात आपके ईश्वरीय सौगात का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तब तक आदरणीय गीता बहन जी हमें अपने ज्ञान के कुछ अनुभव शेयर करेंगे।
ओम शांति। जो भी बीके गाइड भाई बहने आए हैं, बीके टीचर्स बहने आई हैं, वो स्टेज के पीछे बहनों के तरफ पहुंच जाएं। वहां आपको जरूरी आपसे बात करनी है। आप सभी समझ सकते हैं कि 4-5 हजार राजयोग शिविर में सारे मेहमान आए हैं, तो आप सभी के सहयोग से ही पूरी व्यवस्था हम अच्छी चला सकेंगे। इसलिए कृपया जैसा आपको कहा जाए ऐसे आप करते रहें। आज इस कार्यक्रम के अंत में आप सबको सौगात दी जाएगी।
इसको बोलो सौगात दे, सौगात दे।
इस विद्यालय के तरफ से आपको गिफ्ट दी जाएगी, प्रसाद दिया जाएगा। इसलिए सभी बैठे रहे, फिर बाद में एक एक करके आप मांगने आएंगे तो देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक डायरी और बॉल पेन है जो विद्यालय के तरफ से आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। इसके हर पेज पर ऊपर नीचे बहुत सुंदर आध्यात्मिक स्लोगन लिखे हुए हैं, मेडिटेशन के पिक्चर्स भी हैं और उसकी समझानी भी है। कुछ हमारे केंद्रों के एड्रेसेस भी हैं। तो ये डायरी और बॉल पेन आपको गिफ्ट में दी जाएगी। अगर कोई ये न लेना चाहे तो दूसरी गिफ्ट है, ये श्री लक्ष्मी नारायण का सुंदर चित्र है। ये इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, हमें मनुष्य से देवता बनना है। हम कहते हैं ना कि न रैसी करणी करे तो वो श्री नारायण बन सकता है, और नारी ऐसी करणी करे तो वो श्री लक्ष्मी बन सकती है। तो ये कोई पूजा पाठ या दर्शन के लिए नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये लक्ष्य है। रोज इनको देखना और स्वयं को देखना कि इनमें और हमारे में क्या अंतर है, और अगर हमें इन देवी देवताओं जैसा बनना है तो कौन से सद्गुणों को धारण करना है। दो में से कोई एक चीज आपको लेनी है, दोनों नहीं लेनी है। या तो आप डायरी और बॉल पेन ले या श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, दो में से एक गिफ्ट आपको लेनी है। तो आप जब आपको बुलाया जाएगा पहले से सोच कर आएंगे कि हमें कौन सी गिफ्ट लेनी है। प्रसाद भी आप सबको दिया जाएगा, मुख मीठा कराया जाएगा, और जिस स्टेट का नाम दिया जाए केवल वही भाई बहने आएंगे, शांति से लाइन में आते जाएंगे। इसलिए थोड़ा आप व्यवस्था में सहयोग देंगे तो शांति से जल्दी से कारोबार पूरा हो जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आज जो भाई बहने माउंट आबू घूमने गए थे, हमें एक कंप्लेन आया कि बहुत घमसान किया, बहुत आवाज किया, बहुत अव्यवस्था की। पीने का पानी था वहां, हाथ पांव धोने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सबके लिए, जब आप माउंट आबू घूमने जाएंगे तो आप साइट सींग ऑफिस में एक दिन पहले लिखाएंगे, व्हीकल बुक कराएंगे, तो हम माउंट आबू में सूचना देंगे और पांडव भवन में भोजन का प्रबंध आपको मिलेगा। पर वहां रॉयलिटी से, शांति से, मैनर्स के साथ हमें चलना है ताकि सारी व्यवस्था अच्छी बनी रहे। तो ये आप सभी सहयोग देंगे, और आज के बाद चार दिन और है, जो जब भी घूमने जाएंगे माउंट आबू, किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि इन मेहमानों ने ऐसा किया। इसलिए टीचर्स बहने, वीके गाइड भाई बहने भी ध्यान देंगे कि जहां भी आप जाएंगे शांति से, दिव्यता से और शिस्त से जाएंगे, तो हर प्रकार की व्यवस्था भी मिलेगी और शांति भी बनी रहेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये डायरी और बॉल पेन, हमारी दादी सदा कहती है कि रोज उठकर सवेरे कोई एक पेज के स्लोगन आप पढ़ें और सारा दिन उसे याद रखें। तो सारे दिन में आने वाली समस्याओं को पार करने में इन स्लोगन से आपको बहुत मदद मिलेगी, मानसिक स्थिरता रहेगी, शक्ति रहेगी और इसमें ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स आप लिखेंगे। इस डायरी में हिसाब किताब की, नौकरी धंधे की, गृहस्थी की बातें नहीं लिखना है। इस डायरी का उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान और योग की पढ़ाई के लिए आप करेंगे। तो ये इसी लक्ष्य से आपको दिया जा रहा है। और हमारे बाबा जब थे, ब्रह्मा बाबा जब हयात थे, तभी से ये रस्म, ये प्रथा है कि बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं उनको छोटी मोटी कोई भी गिफ्ट दी जाती है। वो क्यों दी जाती है? ताकि आपको याद रहे कि हम आबू आए थे, गए थे, हमने भगवान का ज्ञान सुना था। तो वो जितना आप याद रखेंगे उतना आपको अपने जीवन में फायदा होगा। तो ये गिफ्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, दुनिया में बहुत चीजें मिलती हैं, पर ये भगवान के घर में आप पधारे हैं उसकी यादगार निशानी है, इसलिए इसको संभाल के रखेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हमने बाबा के घर में जाकर सत्य ज्ञान सुना है, समझा है और उसे हमें आचरण में लाना है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय जो चल रहा है उस वातावरण में सबसे ज्यादा मानसिक बीमारियां हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 80% बीमारियां मानसिक कारणों से हो रही है। इसलिए आज के वातावरण में आप देखेंगे चारों ओर टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी मन के कमजोरी के कारण बीमारियां हैं। और जो भी आज भ्रष्टाचार, बलात्कार, व्यभिचार, पापाचार, आतंकवाद, ये सब मानसिक विकृतियों के कारण है। तो ऐसे में मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जब आए ही है तो अच्छी तरह से इसका लाभ लेकर जाएंगे। तो आपके घर के युवा, बच्चे, बच्चियां, बहनें, भाई, सबके लिए ये उपयोगी है। तो अब हमारे भाई बहनों ने आप सबके लिए गिफ्ट की तैयारियां कर दी है। आप गिफ्ट लेंगे, प्रसाद लेंगे और ये जो ट्रे रखी है सामने, क्योंकि कई मेहमान इस विद्यालय के लिए भी गिफ्ट लेकर आए, कोई इस ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं, कोई दादियों के लिए, बाबा के लिए कुछ लेकर के आए हैं, तो जिसको विद्यालय के लिए, बाबा के लिए, दादियों के लिए गिफ्ट देना है, सहयोग देना है, जो कुछ देना है वो आप इसी ट्रे में रखेंगे। तो पहले हम 3 मिनट साइलेंस में बैठे, सभी अलर्ट होके बैठ जाएं। उसके बाद डॉक्टर सविता बहन जी जैसे कहे उस स्टेट के भाई बहने उठेंगे और लाइन में आएंगे। तो बिल्कुल शांति से बैठ जाएं, 3 मिनट साइलेंस।
धर्म का ज्ञान रहे ईश्वरी